लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आर्थ याचना करते हैं कि विश्व के समस्त राष्ट्र और नागरिक हथियारों के उपयोग को कम कर शांति और अहिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम पर चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरे कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करती जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में अर्थव्यवस्था और आयात पर वितरण के संबंध में हमने कहा कि जब तक गरीबों की समस्याओं का मौलिक रूप से हल नहीं किया जाता है, दुनिया की समस्याओं का समाधान या किसी अन्य समस्या जिसे हम अपने में पाते हैं हल नहीं किया जा सकता है। असमानता सामाजिक बुराई की जड़ है। श्रोताओं, सभी आर्थिक नीतियों का आकार ऐसा होना चाहिए कि वे हर व्यक्ति की गरिमा और सामान्य भलाई की खोज में ध्यान रखती हो। कभी कभी यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वे बाहर से आयात किए गए मात्र परिशिष्ट प्रतीत होते हैं, जो केवल एक राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति होते जिसमें परियोजनाओं का सही दृष्टिकोण या सच्चे और समग्र अभिन्न विकास का अभाव होता है। कितने ही शब्द इस व्यवस्था के लिए कटुप्रद सिद्ध होते हैं। जब नैतिकता का सवाल उठाया जाता है, जब वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया जाता है, जब वस्तुओं के समान वितरण की बातें कही जाती, जब मजदूरों की सुरक्षा की बात आती और शक्तिहीनों के सम्मान की रक्षा की बात कही जाती है, जब न्याय के लिए प्रतिबद्धता की मांग की जाती, तो ईश्वर की ओर इशारा किया जाता। ये सारी स्थितियां दुखदायी होती हैं। दूसरे समय में ये सारी समस्याएं बयानबाजी के द्वारा कमजोर कर दी जाती हैं। इस तरह के सवालों के सामने उदासीनता हमारे जीवन और हमारे सभी अर्थपूर्ण शब्दों को खोखला कर देती है। व्यापार एक बुलाहट है और यह एक नेक चुनाव है, बशर्ते कि जो इसमें संलग्न हैं वे जीवन के बृहद अर्थ से चुनौती लेते हों। यह उन्हें सही अर्थ में जन सामान्य की भलाई करने में मदद करेगा, जहां वे दुनिया की चीजों में बढ़ोतरी लाते हुए उसे सबों के लिए उपलब्ध करते हों। श्रोताओं, हम अनदेखी ताकतों और बाजार के अदृश्य हाथ पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। न्याय में विकास हमारे लिए अर्थव्यवस्था में विकास से अधिक जरूरी है, जबकि ऐसा विकास हेतु हमसे निर्णयों, कार्यक्रमों, तंत्रों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता की बात व्यक्त करती है, जो विशेष रूप से आय के बेहतर वितरण, रोजगार के स्रोतों के निर्माण और गरीबों को एक अभिन्न प्रोत्साहन के लिए तैयार हो, जो एक साधारण कल्याणकारी मानसिकता से परे जाती है। मैं एक गैर जिम्मेदार लोक लुभावनवाद का प्रस्ताव करने से अपने को दूर रखता हूँ, संत पापा कहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था उन उपायों की ओर अभिमुख नहीं हो सकती है जो एक नया जहर है, जैसे कि कार्य क्षमता को घटाते हुए लाभ बढ़ाने का प्रयास करना और इस तरह बहिष्कृत लोगों की संख्या में बढ़ोतरी लाना। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वे हमारे लिए उन राजनीतिज्ञों को प्रदान करें जो अपनी निष्ठा में प्रभावकारी वार्ता करने हेतु सक्षम हैं, जिससे वे दुनिया की बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हों, न कि उनका छिछला समाधान खोजते हों। राजनीति को हालांकि अक्सर बदनाम किया जाता है, फिर भी यह एक उच्च बुलाहट और उच्चतम दानों के रूपों में से एक है, क्योंकि यह जन सामान्य की अच्छाई की चाह रखती है। हमें इस बात से विश्वस्त होने की जरूरत है कि करुणा न केवल सूक्ष्म संबंधों का सिद्धांत है, जहां हम अपने को अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों या छोटे समूह तक ही सीमित रखते हैं, बल्कि यह स्थूल संबंधों का आधार है, जहां हम समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिज्ञों से अपने को संयुक्त पाते हैं। संत पापा फ्रांसिस ईश्वर से अपनी विनय प्रार्थना में यही निवेदन करते हैं कि मैं ईश्वर से यही अर्जी करता हूँ कि वे सच्चे राजनीतिज्ञों को हमारे लिए प्रदान करें, जो समाज की स्थिति से, लोगों और गरीबों के जीवन से अपने को विचलित होता पाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार के नेतागण और अर्थव्यवस्था के नेता अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करते हुए इस बात के लिए कार्य करते हों कि सभी नागरिकों को रोजगार का सम्मान, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो। हम ईश्वर की ओर अभिमुख होते हुए क्यों ना उनसे उनकी परियोजनाओं को फलहित करने हेतु निवेदन करें। संत पापा कहते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के सम्मुख अपने को खोलना हमें निश्चित रूप से राजनीतिक और आर्थिक रूप में हमें नई विचारपूर्ण मनोभावों से सुव्यवस्थित करेगा, जिसके फलस्वरूप हमें अर्थव्यवस्था और समाज के सामान्य अच्छाई के बीच अलगाव की दीवार को तोड़ने में मदद मिलेगी। श्रोताओं, अर्थव्यवस्था, जैसे कि यह शब्द हमें इंगित कराता है, हमारे आम घर के उपयुक्त प्रबंधन को प्राप्त करने की कला होनी चाहिए, जो एक समग्र रूप से हमारी यह पृथ्वी है। दुनिया के एक हिस्से में लिए गए हर अर्थपूर्ण आर्थिक निर्णय का असर सभी जगह होता है। परिणाम स्वरूप कोई भी सरकार साझा जिम्मेदारी की परवाह किए बिना कार्य नहीं कर सकती है। वास्तव में वृहद वैश्विक समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान खोजना लगातार कठिन होता जा रहा है, जो कठिनाइयों के समाधान में स्थानीय राजनीति को प्रभावित करता है। यदि हम एक स्वस्थ वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाह रखते हैं, तो इतिहास के इस जटिल परिस्थिति में हमें चाहिए कि हम अधिक प्रभावकारी ढंग से वार्ता करें, जो सभी राष्ट्रों के संग हो, न कि केवल कुछ देशों के संग, क्योंकि यह सभी देशों की आर्थिक भलाई सुनिश्चित करती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गॉडियम पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो, जब जब मैं पुकारू तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो, मेरी आवाज में। जब मैं पुकारू तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तू हो।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार 30 मई को जून महीने के प्रेरितिक प्रार्थना के मतलब पर वीडियो संदेश दिया। संत पापा ने कहा, अत्याचार कल की कहानी नहीं है, दुर्भाग्य से यह आज के इतिहास का हिस्सा है। यह कैसे संभव है कि मनुष्य में क्रूरता की क्षमता इतनी अधिक है? यातना के बहुत हिंसक रूप हैं, अन्य अधिक परिष्कृत हैं, जैसे अपमानजनक व्यवहार, असंवेदनशीलता या अमानवीय परिस्थितियों में सामूहिक हिरासत, जो किसी भी व्यक्ति की गरिमा को नष्ट कर देता है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। जरा सोचिए, खुद यीशु पर कैसे अत्याचार किया गया था और सूली पर चढ़ाया गया था। आइए इस अत्याचार की भयावहता को रोकें। व्यक्ति की गरिमा को सबसे ऊपर रखना आवश्यक है, अन्यथा पीड़ित लोग व्यक्ति नहीं वे चीजें बन जाते हैं और उन पर माप से अधिक दुर्व्यवहार किया जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है या आजीवन स्थायी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक क्षति होती है। आइए हम प्रार्थना करें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पीड़ितों और उनके परिवार के लिए समर्थन की गारंटी देते हुए यातना के उन्मूलन के लिए खुद को ठोस रूप से प्रतिबद्ध करें। संत पापा की विश्वव्यापी प्रेरितिक प्रार्थना नेटवर्क ने मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए संत पापा के हर महीने के प्रेरितिक प्रार्थना के मतलब को पूरे विश्व में प्रसार हेतु संत पापा वीडियो की पहल की। और संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पियूस 10वें भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैमिली ग्लोबल कॉम्पैक्ट के लॉन्च के अवसर पर संदेश दिया। परिवार का कल्याण दुनिया और कलीसिया के भविष्य के लिए निर्णायक है। प्रेरितिक उद्बोधन अमोरिस लेतीसिया नंबर 31। इस बात को ध्यान में रखते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा, मैं फैमिली ग्लोबल कॉम्पैक्ट का समर्थन करना चाहता हूं, एक सहयोगी योजना जिसका उद्देश्य परिवारों की प्रेरितिक देखभाल को दुनिया भर के कैथोलिक विश्वविद्यालयों में स्थित परिवार पर अध्ययन और अनुसंधान केंद्रों के साथ बातचीत में लाना है। यह लोकधर्मी परिवार और जीवन के लिए बने परमधर्म पीठीय विभाग और सामाजिक विज्ञान के लिए परमधर्म पीठीय अकादमी की एक पहल है। कॉम्पैक्ट परिवार की सांस्कृतिक और मानव शास्त्रीय प्रासंगिकता और इसके सामने आने वाली नई चुनौतियों पर अध्ययन और शोध से प्रेरित है। संत पापा ने कहा, फैमिली ग्लोबल कॉम्पैक्ट का मतलब कुछ विचारों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से एक स्थिर कार्यक्रम नहीं है, बल्कि चार लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक संरचित प्रक्रिया है। पहला, पारिवारिक मुद्दे से निपटने वाले विश्वविद्यालय अध्ययन और शोध केंद्रों के बीच बातचीत की प्रक्रिया शुरू करना और उनकी गतिविधियों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए विशेष रूप से कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत से प्रेरित विश्वविद्यालय संस्थानों के नेटवर्क को बनाना या फिर से सक्रिय करना। दूसरा, क्रिश्चिय समुदायों और कैथोलिक विश्वविद्यालयों के बीच सामग्री और लक्ष्यों का अधिक तालमेल बनाना। तीसरा, समाज में परिवार और जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देना ताकि मददगार सार्वजनिक नीति संकल्प और उद्देश्य सामने आ सके। चौथा, इससे उत्पन्न होने वाले प्रस्तावों में सामंजस्य बनाना और उन्हें आगे बढ़ाना ताकि परिवार की सेवा को आध्यात्मिक, प्रेरितिक, सांस्कृतिक, कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बढ़ाया और बनाए रखा जा सके। संत पापा ने कहा, परिवार में ही मानव समुदाय के लिए ईश्वर के कई सपने साकार होते हैं। हम जीवन और प्रेम के समुदाय के रूप में परिवार के भविष्य के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। एक पुरुष और एक महिला के बीच एक अद्वितीय और अघुलनशील प्रतिज्ञा, एक ऐसा स्थान जहां पीढ़ियां मिलती हैं, समाज के लिए आशा का स्रोत है। यह याद किया जाना चाहिए कि परिवार का सभी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह सामान्य भलाई का जनक है। स्वस्थ पारिवारिक रिश्ते न केवल पति पत्नी और बच्चों के लिए, बल्कि पूरी कलीसिया और नागरिक समुदाय के लिए समृद्धि के एक अद्वितीय स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का कहना है कि सुपर टाइफून मावर से प्रभावित फिलीपीन के उत्तरी क्षेत्रों में यूनिसेफ फिलीपीन की सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध और तैयार है। संयुक्त राष्ट्र की मानवतावादी एजेंसी यूनिसेफ ने फिलीपीनो बच्चों और परिवारों के लिए चिंता व्यक्त की जो टाइफून मावर स्थानीय नाम बेट्टी के शिकार हो सकते हैं। सुपर टाइफून मावर से उत्तरी फिलीपींस में भारी बारिश बाढ़ और भूस्खलन होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि उन्होंने लगभग 10,000 परिवारों के लिए स्वच्छ पानी स्वच्छता पोषण शिक्षा और बाल संरक्षण की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपातकालीन आपूर्ति तैयार की है। आपूर्ति में घरेलू स्वच्छता किट टेंट जल शोधन टैबलेट उपयोग के लिए तैयार की गई चिकित्सीय खाद्य पदार्थ और स्कूल की आपूर्ति शामिल है। देश के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि सोमवार तक टाइफून मावर प्रशांत महासागर से लगभग 525 किलोमीटर पूर्व अपारी में 155 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर हवाओं और 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन यह काफी धीमी होने की उम्मीद है क्योंकि यह ताइवान और दक्षिण जापान की ओर उत्तर पूर्व में है। फिलीपींस के अधिकारियों ने देश के उत्तरी प्रांतों में लोगों को निकालना शुरू कर दिया। उधर प्लास्टिक प्रदूषण पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के विकास को फिर से शुरू करने के लिए प्लास्टिक के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति सोमवार 29 मई से 2 जून तक पेरिस में बैठक आयोजित की है और 2024 के अंत तक पूरी होने वाली 5 बैठकों में से दूसरी है। पिछले साल लगभग 175 देशों ने जीवाश्म ईंधन आधारित प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को समाप्त करने के लिए 2024 तक एक बाध्यकारी सौदे पर सहमत होने का संकल्प लिया था। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि संधि वार्ताओं की समय सीमा कम है, इसीलिए इस सप्ताह की बैठक का परिणाम प्रारंभिक संधि के प्रारूपण के रूप में होना चाहिए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।